ओम शांति। एक बार एक युवक होता है और वो गरीबी से बहुत परेशान रहता है और परेशानी में वो चिंता में रहने लगता है, अपने जीवन से भी तंग होने लगता है, सोचता है कि मैं अपने जीवन की लीला समाप्त कर लूं। तो इसी संकल्प से वो घर से निकल जाता है और एक नदी किनारे टहलने लगता है कि मैं इसमें अपना जीवन पूरा कर दूंगा। तो वो वहाँ टहलता रहता है, फिर वहाँ एक साधु आता है। तो साधु देखता है कि ये परेशान दिख रहा है, तो उसको पूछता है, परेशान क्यों हो? बोला, मैं गरीबी से बहुत परेशान हूँ, जितनी सफलता चाहता हूँ हो नहीं पाती है, मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ, नदी में छलांग मार दूँ। तो साधु कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुमको ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। बोला, मैं तुझे एक जादुई घड़ा दूंगा, वो घड़ा अगर तेरे पास रहता है तो गरीबी कभी आएगी नहीं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। अर्थात एक है, अगर तुम 2 साल मेरी सेवा करेगा तो मैं तुमको वो घड़ा दे दूंगा, और अगर तुम 5 साल मेरी सेवा करेगा तो क्या होगा, तो मैं तुमको वो घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। वो घड़ा बनाते कैसे? तो बोले, नहीं, 5 साल ज़्यादा, 2 साल ठीक है, बहुत गरीबी झेल दी, जल्दी जल्दी 2 साल में आ जाएगा। लेकिन बोला, अगर वो घड़ा टूट गया तो गरीबी जो है फिर वापस आ जाएगी, जो भी सुख सुविधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। बोला, नहीं, मैं संभाल के रखूंगा, लेकिन मुझे 2 ही साल सेवा करनी। तो वो युवक बहुत प्यार से सेवा करते रहता है साधु की। 2 साल के बाद उसको वो जादुई घड़ा मिल जाता है और वो जादुई घड़ा लेकर घर में पहुंचता है, तो धीरे धीरे धन संपदा आने लगती है, खुशियां आ जाती हैं घर में, महल माड़ियाँ बन जाती हैं, मोटर गाड़ियां आ जाती हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाता है, बहुत मित्र दोस्त बन जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत आ गया अभी। तो धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो जाती है, लेकिन उस धन के नशे में चूर हो जाता है वो। फिर उसका खाना पीना भी चालू हो जाता है, शराब पीना शुरू कर देता है, थोड़ा उसको अहम भी आ जाता है कि मेरी गरीबी खत्म हो गई। तो एक दिन वो शराब पीते पीते वो घड़े को लेकर डांस करना शुरू करता है और डांस करते करते वो लुढ़क जाता है और घड़ा टूट जाता है और गरीबी वापस लौट आती है। सारी जो उस घड़े से प्राप्त धन संपदा थी, जो भी सुख सुविधाएं, सब समाप्त, एक सेकंड में गरीबी आ जाती है। फिर वो चिंता करता है, सोचता है कि काश मैंने 5 साल सेवा की होती तो वो घड़ा बनाने की विद्या सीख लेता और आज ये नौबत नहीं आती। तो इस कहानी का अर्थ ये है कि हम सफलता को बहुत जल्दी चाहते हैं। अगर उसने वो विद्धि सीख ली होती तो सिद्धि उसकी परमानेंट हो जाती, स्थायी हो जाती, लेकिन जल्दी जल्दबाजी में उसने अपनी सुख सुविधाओं को अर्जित करने के लिए वही रास्ता चुना कि मुझे जल्दी से सफलता मिल जाए। तो इसी तरह से ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये भी थोड़े समय का नहीं है, लंबे समय का है। सिद्धियां तो इसमें भी मिलती हैं, लेकिन अगर सदा काल की सिद्धि प्राप्त करनी है और सदा काल की सफलता अर्जित करनी है तो इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्यता चाहिए, क्योंकि वर्तमान देखा जाता है कि हर कोई सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी अर्जित कर ले हम, लेकिन उसमें हम बहुत सारे धोखे में रह जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो संकल्प करते हैं वो तो सिद्ध होंगे ही, निश्चित है, क्योंकि स्वयं वरदाता का वरदान है कि जो भी हम संकल्प करेंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो सिद्ध जरूर होगा। लेकिन पॉजिटिव संकल्प जो है उसको संपूर्ण सिद्ध करने के लिए लंबा समय लगता है, टाइम लगता है, उसमें बहुत धैर्यता चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो पुरुषार्थ तो हम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी असफलता आती है। लेकिन बाबा कहते हैं हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। असफलता हमको सिखाती है, हमको मजबूत बनाती है। कल था ना विघ्न, विघ्न हमको मजबूत बनाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अनुभवी बनाते हैं। तो जो जल्दबाजी में सफलता अर्जित करते हैं वो अल्पकाल की होती है, उसमें उतना संतोष नहीं होता है। तो विषय आज का यह है आगे दौड़ पीछे छोड़, इसका अर्थ है जल्दबाजी करना। आगे हम दौड़ रहे हैं लेकिन पीछे बहुत सारी बातें छूट भी रही हैं। जल्दबाजी में दौड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन को परिपक्व बनाने वाली हैं, हमको मजबूत बनाने वाली हैं, अगर हम उन पर ध्यान नहीं करते हैं और आगे चलते जा रहे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे ऐसे हिसाब किताब हैं जो पीछे हमको बांध के रखते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उनका पता नहीं चलता है। भले हम आगे दौड़ रहे हैं, सफलता मिल रही है, लेकिन वो जो सूक्ष्म धागे हैं वो हमको पकड़ के रहते हैं, और जल्दबाजी में किया गया कार्य इतना सफल नहीं होता है। वो अगर वो सफलता होती भी है तो अल्पकाल की है, उस सफलता में सुख नहीं है, उस सफलता में खुशी नहीं है, उस सफलता में अतीन्द्रिय सुख नहीं है। क्योंकि प्रख्यात होना चाहते हैं तो सिद्धि या अपनी प्रसिद्धि को अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी फिर अनेक सारे मेथड अपनाते हैं, सूत्र अपनाते हैं, कैसे हम प्रख्यात हो जाएं, कैसे हम सफलता अर्जित कर लें, लेकिन वो मार्ग थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे बाबा के सामने जाना बहुत आसान है, लेकिन उसके जैसा बनना वो मेहनत है। उसके पास तो पहुंच जाएंगे, स्टेज पर पहुंच जाएंगे, दृष्टि ले लेंगे, या बड़ों के आसपास पहुंच जाएंगे, सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, उनके इर्द गिर्द उनकी प्रशंसा करके सिद्धि प्रख्यात तो हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे में परिवर्तन होना चाहिए, जो संस्कारों का परिवर्तन होना चाहिए या भगवान के दिल तक के ऊपर बैठना चाहिए, वो नहीं होता है। फिर उस प्रसिद्धि में हमारी सिद्धियां नष्ट होती जाती हैं। अल्पकाल की सिद्धियां नजर तो आती हैं, प्रसिद्धि तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सदाकाल की जो सिद्धि होनी चाहिए, सदाकाल की जो आंतरिक खुशी होनी चाहिए, तिंद्रिय सुख होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो हमको कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में जल्दबाजी है और उस जल्दबाजी में क्या क्या हमको नुकसान हो रहा है, कहाँ कहाँ हमको हानि हो रही है, कहाँ कहाँ हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो रहे हैं, तो हमको खुद पर एक नज़र रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है कि जल्दबाजी से नुकसान बहुत होते हैं। तो ये जो पथ है ये बहुत धैर्यता वाला पथ है। जैसे बाबा यज्ञ जो स्थापना हुई तो बाबा ने तो बहुत सारी बातें कही, बच्चे अगली दिवाली तो आएगी नहीं, लेकिन कितना धैर्यता का सागर है, करते 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 कहाँ तक बाबा लेके आ गए। इतना लंबा सफर है, अगर उसी समय बता दिया जाता तो शायद इस सफर को तय करना मुश्किल हो जाता उन बच्चों के लिए। लेकिन बाबा ने कैसे धैर्य रख के युक्ति से हम सबको आगे बढ़ाते 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 कहाँ तक पहुँचा दिया, और उस धैर्यता में हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां थी, हमारे जो पुरुषार्थ की स्पीड थी, हमारे अंदर के जो ऐसे संस्कार थे जो परिवर्तन पता कि इतनी जल्दी होने वाले नहीं है, लंबे समय की साधना के बाद, लंबे समय से मन जो अनेक प्रकार की उलझनों से उलझा हुआ है, उनसे बाबा निवारण करने के लिए, उनसे छुड़ाने के लिए तो बाबा ने कितनी युक्तियां अपनाई। क्योंकि जन्म जन्मांतर की आत्मा के अंदर पापों का बोझ है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए तो सहज काम थोड़ा नहीं है। तो धैर्यता बहुत चाहिए इस पुरुषार्थ मार्ग में, अध्यात्म पथ पर जो हम चलते हैं, इसमें महावीर वही है जो धैर्यता का हमेशा साथ रखता है, धैर्यता के आभूषण हमेशा पहने रहता है। तो हम देखेंगे कि इस धैर्यता, इस जल्दबाजी से क्या क्या नुकसान है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो वो कोई भी कार्य में एक्यूरेसी नहीं रहती है, जिस एक्यूरेसी के साथ करना चाहिए वो कार्य उस तरीके से होता नहीं है, उस कार्य को हम निपटाने की बात करते हैं, जल्दी जल्दी उसको पूरा करेंगे, लेकिन उस कार्य में हमको संतोष नहीं होगा। भले वो सब कुछ दिखाई तो देगा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमें अंदर से कचोटती रहेंगी, क्योंकि जो वो हमने जल्दबाजी में सफलता अर्जित की है उसमें बहुत सारी बातें हमने ऐसी बना के रखी हैं जो हमें मन ही मन हमें खाती रहेंगी। तो एक्यूरेसी से एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर हम जल्दबाजी में कोई भी कार्य करते हैं तो एक्यूरेसी नहीं है। फिर उसमें कई प्रकार के बहाने लगाने पड़ते हैं, बहानेबाजी, क्योंकि ज्यों त्यों हमको सफलता अर्जित करनी है तो बहाने भी लगाएंगे, उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, तो बहानेबाजी भी लगाते हैं कि कैसे हम सफलता अर्जित करें। फिर हमारे करैक्टर है, जो करैक्टर है, जो हमारे चरित्र हैं, वो भी उनको भी हम ताक पर लगा देते हैं। हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं उनको भी हम किनारे कर देते हैं जैसे तैसे सफलता अर्जित करने के। तो हमको देखना है कि इससे नुकसान बहुत सारे होते हैं, अनेक प्रकार की। अगर जल्दबाजी करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हमको घेर लेती हैं, टेंशन, बेचैनी, चिंता, घबराहट अंदर ही अंदर हमको खाने लगती है। तो इस जल्दबाजी के चक्कर में हमको ये देखना है कि कैसे हम इससे छुटकारा प्राप्त करें। बहुत धैर्यता चाहिए, और उसको अर्जित करने के लिए धैर्यता कैसे आएगी जीवन में, जीवन में धैर्यता कैसे आएगी? जो भी यज्ञ हिस्ट्री है, जो भी इस यज्ञ की महान विभूतियां, जो आधार स्तंभ हैं इसके, जो पूर्वज हैं, उनकी हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके जीवन के अनुभव जो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर उनको बार बार देखते हैं, बार बार उनको पढ़ते हैं, तो स्वतः ही मन में हलचल होती है कि कितना बड़ा धैर्य रखा उन्होंने, कितना बड़ा त्याग, तपस्या, कितना लंबा सफर तय किया, उनके आधार पर आज यज्ञ इतने विशाल वट वृक्ष के समान पूरे संसार को छत्रछाया दे रहा है, पूरे संसार को शांति प्रदान कर रहा है। तो उन पुराने पूर्वजों का अनुभव, एक एक पूर्वज का अनुभव कितने जबरदस्त है, जो आंगन में देखते हैं फोटो, उनके पिक्चर देख के ऐसा लगता है जैसे लाइव बैठे हुए हैं, सभी सारे दादियां कितनी बैठी हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल लाइव बैठी हैं। हैं जी, हाँ, हम ही को देख रहे हैं। तो वास्तव में वो तो हैं सूक्ष्म में, चित्र रूप में, लेकिन वास्तव में वो सचमुच हमारे इर्द गिर्द ही है। एक बार पहले भी बताया था कि हम भले इधर उनको, लेकिन बाहर वाले इन चीजों का अनुभव करते हैं। पहले भी शायद बताया था इधर ही कि एक भाई दिल्ली से आया था, बहुत साल पहले की बात है। वो भाई को हमें बहन जी ने फोन किया था कि आप इसका थोड़ा केयर करना। तो उसकी युगल थोड़ा थोड़ा ज्ञान में चलती थी, लेकिन उसकी सास भी ज्ञान में चलती थी। तो उनको लेके आई, सास लेके आई दोनों को, तो यहां सुखधाम में ठहराया। पहले तो वो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार ही नहीं था इधर, तो गाड़ी से उतर बड़ी मुश्किल से उसको बोला, बोलता नहीं मैं बाहर ही होटल में ठहर जाऊंगा, क्योंकि बहुत एंटी था वो। तो उसको बड़ा मुश्किल से तैयार किया कि चलो आप जाना ही बाहर, तो स्नान पानी करके चले जाना। तो खैर उतरा, फिर इधर ओम सुखधाम में ठहरा। तो फिर हमने उसको बोला कि भोजन कर लो, बोला भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं किया उसने। तो फिर शाम के टाइम वो घूमने चले गए पीस पार्क में, होटल में तो नहीं गया लेकिन ठहरा इधर ही, लेकिन भोजन नहीं किया, बोला मैं बाहर ही करके आ जाऊंगा। तो पीस पार्क में चले गए, उसकी गाड़ी थी BMW, बहुत महंगी गाड़ी होती है। तो वहां पीस पार्क देखने के बाद जब वापस लौटा तो उसके जो कांच था साइड वाला, वो गाड़ी ने टक्कर मार के किसी की गाड़ी ने तोड़ दिया था। अब वो कांच ही 25-30 हजार का होता हो, साइड वाला कांच। तो उसका मन थोड़ा खट्टा हो गया, वापस आया और यहां सुखधाम में। तो फिर रात्रि के भोजन के लिए तो वो बेटी, माँ बेटी तो आए, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर हमने पूछा, बोला ऐसे ऐसे अभी थोड़ा मन उसका खट्टा है। फिर तो हम बाबा के जो अंदर भोजन होता है उसमें थोड़ा लेट आए थे, तो हम तो कड़ी चावल दाल जो भी था तो ठंडे भी हो गए थे, हम एसिड से ले गए उसको। तो उसने भारी मन से एक दो रोटी तो खाई, लेकिन देखा उसको अंदर में बहुत ऐसे लगे, नुकसान भी हो गया। फिर उसने हमारे से पूछा कि ये आप भी जो देख ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी हुई है, ये तो शरीर छोड़ दिया हुआ है, ये तो अभी भूत है, ये किस लिए लगाई ये फोटो इधर? तो हमने उसको समझाया, जितना भी हमको समझ थी, तो हमने समझाया भी ऐसे ऐसे नहीं है, या बाबा अभी भी यहाँ ही है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए वो अव्यक्त हुए हैं, जो भी हमको पता था समझाया उसको। तो फिर उसके बाद वो सो गया। फिर मॉर्निंग में बोलता सवेरे हम चले जाएंगे, बोला ठीक है। तो सवेरे नाश्ता करने आए, तो नाश्ता करने के बाद तो बोलता अभी हम चले जाएंगे। मैं बोला ठीक है। तो जैसे डाइनिंग हॉल से आने लगे तो शांति स्तंभ पर पहुंचे, तो शांति स्तंभ पर सामने जैसे वो देखने लगा टावर ऑफ पीस, तो वहां देखने की जो थोड़ा ऐसे देखा उसने, तो विशाल भवन की जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, तो वहां उसको ब्रह्मा बाबा खड़ा दिखाई दिया जैसे पोस्टर में ऐसे खड़ा करके। तो उसने उसमें बताया नहीं हमको। तो फिर वहां से वापस लौटे, फिर यहां गेट से बाहर निकलने लगा, तो यहां फिर उसको दिखाई दिया। तो फिर उसको बाबा ने कहा बच्चे मैं अभी इधर ही हूं, जब तक ये कार्य हो संपन्न मैं इधर ही हूं अभी तक। तो सोच रहे ये कहीं इस भाई ने बोला तो कहीं ऐसे तो नहीं हो रहा बार बार, लेकिन ये तो दिन में देख रहा है चेतन में। तो फिर उसके बाद मुझे वो कहता है, उसमें उसने मुझे ये बताया नहीं लेकिन उसमें कहता कि एक दिन मैं और रह सकता हूं। तो मैं बोला अभी भी क्या हो गया इसको, अभी भी तो कह रहा था जाना है। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो फिर वो ज्ञान सोर गए घूमने, म्यूजियम वगैरह घूमा, फिर वापस आए, फिर शाम को फिर भोजन किया। तो शाम को कहता है कि मुझे रात को एक सपना आया था, और सपने में देखा मैंने कि ऊपर से एक रथ आया, और उस रथ में ये बाबा बैठे हुए थे, और बाबा ने मुझे रथ में बिठाया और ऊपर ले गया, और ऊपर ना एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, और उसमें एक ना खुले बालों वाली लेडी बैठी है, माता बैठी है कोई, और बहुत सारे ऐसे सफेद कपड़ों वाले बैठे हुए हैं, और उसमें आहुतियां डाल रहे हैं। तो बोला इसका अर्थ क्या है? तो हमने सोचा इसने वो कर्मेंद्रियों वाला रथ वाला चित्र देखा होगा। तो हमने समझा दिया कि ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ये रथ है। तो फिर वो वापस उनको फिर घुमाने लिया, तो ओम शांति उनमें, तो जैसे उसने मम्मा की फोटो देखी, मम्मा की फोटो पता नहीं कहां दिखाई, तो मम्मा की फोटो देखते हुए उसको कहता यही ऊपर माता बैठी हुई थी, तो ऊपर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। और बोला बाबा ने कहा जब तक उस, फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मैंने बाबा को इधर देखा, बोला बाबा ने कहा जब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, यज्ञ कार्य संपन्न नहीं हुआ, तब तक मैं यही हूं। तो देखो ये बार वाले भी अनुभव करते हैं, तो जो चित्र लग रहे दादियों के एकदम लाइव लगते हैं। तो वास्तव में जिन महान विभूति ने इतनी बड़ी त्याग तपस्या की है, तो ऐसे थोड़ा छोड़ के चले जाएंगे अपने कार्य को, वो वास्तव में हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब तक हम संपन्न हुए तो छोड़, क्योंकि परिवार का हिस्सा है, और परिवार से कितना लगाव होता है, लौकिक में परिवार से कितना लगाव होता है, तो वो एक अलौकिक परिवार है, उस अलौकिक परिवार के सच्चे सच्चे भाती है, तो फिर कैसे छोड़ के जाएंगे हमको, तो हमारे इर्द गिर्द ही है। तो ये जो संगम का पुरुषार्थ है वास्तव में इसमें बहुत सूक्ष्म आया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा धैर्यतापूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है, पुरुषार्थ को बहुत रमणीक बनाने की जरूरत है। हम सोचते हैं एकदम हमारा मन बुद्धि ऊपर ही लग जाए, ऊपर नहीं, वास्तव में ये मधुबन ही परमधाम के समान है, मधुबन ही सूक्ष्म वतन के समान है, जो बाबा हर समय हमारे पर नजर रखा हुआ था। कल था ना मुरली में कि स्वयं भगवान तुमको दृष्टि दे रहा है, तो बाबा की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी करते हैं, अपने चिंतन के ऊपर धैर्यतापूर्वक गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो जल्दबाजी के चक्कर में हम बहुत सारे सुख से, अतिंद्रिय सुख से वंचित रह जाते हैं। तो हमको ये पुराणों के जो अनुभव हैं, ये अनुभव हमको परिपक्व बनाते हैं, मैच्योर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे अनेक प्रकार के दुखों को हर लेते हैं, हमारी चिंताओं को समाप्त कर देते हैं, ये हमारे जैसे सुख के साधन है ये। तो हमको पुराणों के अनुभव बहुत अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए। अभी एक तारीख को संदेशी दादी का 2007 में श्री छोड़ा था, उनके 12 साल हुए, तो हम पढ़ रहे थे उसका, उनका अनुभव किसने व्हाट्सएप भेजा था, 16 पेज का पीडीएफ फाइल, तो उसमें 7 नंबर के पेज में है, छोटा सा अनुभव है कि कैसे कैसे अनुभव चलते थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि हिसाब किताब कैसे होते हैं, एक कन्या की आत्मा वो दादी में आ गई उस समय, कराची की बात, और दादी की आत्मा उधर चली गई, कैसे हो गया, अब मेरे संस्कार इसके हो गए, इसके संस्कार मेरे हो गए, तो वो ये विचित्र अनुभव चलते थे, ये भी सब सारे बातें होती थी। तो उन परिस्थितियों में भी उन आत्माओं ने कितना कैसा अपना धैर्य बना के रखा, नहीं तो वो सोचते ये क्या हो रहा है, उस चीज को छोड़ के चले जाते। तो जीवन में अनेक प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव आते हैं, हमको उनसे घबरा नहीं जाना है, उनको जल्दबाजी से बिना निर्णय के फौरन छोड़ नहीं देना है, हमको उनसे सीखना है, हर बात हमको हर तरीके से परिपक्व बना रही है, मैच्योर बना रही है, हमको सिखा रही है, क्योंकि पूरे विश्व की राजाई को चलाना है, पूरे 5000 वर्ष का जो राज्य चलाना है, और उसको चलाने के लिए हर प्रकार के अनुभव से हमको संपन्न होना है। तो अपने पुरुषार्थ में जल्दबाजी करने के बजाय हमको थोड़ा धैर्यतापूर्वक जैसे हम चल रहे हैं उसके प्रति थोड़ा बहुत बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर जल्दबाजी हम करते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की टेंशन बीमारियां आ घेरती हैं, मन में अस्थिरता बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, घबराहट आएगी, बेचैनी होएगी, फिर दूसरों को भी वैसे ही करेंगे, माहौल भी वैसा तैयार कर देते हैं, इरिटेशन बढ़ेगी अंदर में जल्दबाजी के चक्कर में, जितनी हमको जिस तरीके से हमको अंदर बताया सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और फिर हम जजमेंट भी ठीक नहीं कर पाते हैं, फौरन डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जजमेंट करने के लिए मन बड़ा शांत चाहिए, मन बड़ा मजबूत चाहिए, मन बड़ा शुद्ध संकल्पों से संपन्न चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अंदर में वो खजाना है ही नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, तो फिर फौरन डिसीजन ले। जैसे एक बार बताया, एक था 24-25 साल का युवक था, तो वो ट्रेन में सफर कर रहा था, माँ बाप भी उसके साथ में थे, तो वो युवक कहता है कि माँ बाप को कहता बाहर देखे, देखो देखो पेड़ भी कैसे दौड़ रहे हैं, देखो बादल भी दौड़ रहे हैं, ये मनुष्य भी दौड़ रहे हैं। तो वो सामने एक दंपत्ति बैठा हुआ था, उनसे रहा नहीं गया, बार बार बोला आप अपने बेटे को हॉस्पिटल में दिखाते क्यों नहीं, ये इतना बड़ा हो गया है और इसको पता नहीं चल पा रहा कि ट्रेन चल रही है, पेड़ थोड़े नहीं दौड़ रहे हैं, पेड़ तो वही है, बादल थोड़े नहीं दौड़ रहे हैं, ट्रेन दौड़ रही है, मनुष्य थोड़ा दौड़ रहे हैं, ये तो ट्रेन दौड़ रही है। तो वो कहते हैं माँ बाप कि इसको मैं हॉस्पिटल से ला रहे हैं, ये 24 साल के बाद देखना शुरू किया, इसने अंधा था ये भी, तो अब ये नया नया देख रहा है, इसको पता चल रहा है। तो जो फौरन सामने वाली दंपत्ति ने जो फौरन डिसीजन दिया तो बिना सोचे समझे दे दिया डिसीजन कि 24 साल का लड़का है और ये ऐसे कर रहा है, लेकिन उनको ये क्या पता था कि ये बेचारा पहले अंधा था, ये नया नया देख रहा है। तो इसी तरह से कोई जीवन में कोई कुछ कार्य करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, हम उसका फौरन डिसीजन ना दे दें, क्योंकि उसके आगे पीछे उसके क्या कारण रहे होंगे, क्या परिस्थितियां रहेंगी, उसका जो माहौल है, उसके परिवार है, या जो भी अंग संग है, जो भी संबंध संपर्क है, सबके अपने अपने कारण हैं। तो हम फौरन डिसीजंस लेके ठप्पा नहीं लगा दें कि ये पुरुषार्थ ऐसे नहीं कर रहा है, इसकी कमी कमजोरियां, ये पुराने हैं नए हैं, ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। तो जल्दबाजी हम ड्रामा की विस्मृति में चले जाते हैं, और जैसे विस्मृति की दुर्घटना घटेगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जल्दबाजी में अगर जाते घर से भी कोई भी काम करने के लिए अगर जल्दबाजी घर से निकलते तो कई बार कई चीजें घर में रह जाती हैं, फिर बाद में पता चलता है कि तो चीजें घर में रहेगी, जल्दबाजी के चक्कर में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, लाभ ब्रेक कर देते हैं, हम रोड पर जा रहे हैं और लाभ ब्रेक कर दिया जल्दबाजी में, तो उसका नुकसान किसको होगा, हमें होगा ना। तो जल्दबाजी के चक्कर में हम खुद ही अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं, अपने जीवन को ही अनेक प्रकार की अविनाशी संपत्ति से वंचित कर रहे हैं। तो स्वयं के ऊपर जांच रखनी है कि जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे हम दौड़ते जा रहे हैं और पीछे बहुत सारे ऐसे हिसाब किताब है जो अभी चुकतू नहीं हो रहे हैं, और अंत में पता चलेगा ये तो हमको चुकतू करने थे, ये तो जंजीरें अभी बंधी हुई हैं, इनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी बातों में जाने के बजाय स्वयं को ही थोड़ा गहराई से पुरुषार्थ करने के प्रति सचेत करना पड़ेगा कि कहां कहां हमारी बुद्धि जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय पुरुषार्थ तो करना चाहते हैं लेकिन जल्दी जल्दी सफलता अर्जित करने के लिए अनेक प्रकार के जो अमर्यादित रास्ते हैं उनको हम उन पर चलना शुरू कर देते हैं जो मर्यादा से विपरीत हैं। वो अल्पकाल का मिल जाएगा हमको, अल्पकाल की सिद्धि मिलेगी लेकिन उसमें हमारी उन्नति नहीं होगी, हमारी अवनति होगी, और ना केवल हमारी बल्कि दूसरों के प्रति भी हम वैसा ही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे हमको आज सुनने से नहीं कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो जो हम कहते हैं उस पर हम चलने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान सुनना बहुत सहज है लेकिन उसकी गहराई में जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, याद तो रह जाएगा लेकिन उसकी गहराई में डूबना, उसको जीवन में आत्मसात करना, वो हमारे कर्मेंद्र में समा जाए, कदम कदम पर वो स्मृति में आए, तो ज्ञान जब स्मृति में तभी रहेगा जब धैर्यतापूर्वक उसका थोड़ा पर गहराई पर चिंतन करें, क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान है और ये बुद्धि में बहुत सारा विष भरा हुआ है, बड़ा सूक्ष्म हिसाब किताब है, कहां दृष्टिवृत्ति पर हमारा पूरा कंट्रोल, कहीं इधर उधर तो नहीं भटक रहा है। एक है स्थूल, कहीं आंखों से हमारा स्पर्श कहां हो रहा है, आंखें हमारी कहां स्पर्श कर रही हैं, हमारे संकल्प कहां कहां स्पर्श कर रहे हैं, हमारे बोल किसी को ऐसे आत्मघात के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति हमारे ऐसे कटाक्ष भरे बोलते नहीं है। तो हमको सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा दिन, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पुरुषार्थ भी बहुत मीन होता जाता है और माया भी बहुत मीन होती जाती है। और जैसे माया अलग रूप से हमारे पर बार करेगी तो डिसाल्टेड होते हैं, क्योंकि कई प्रकार की माया को तो हम जीत चुके हैं, लेकिन एक नए प्रकार की जब आती है तो सोचते हैं अभी भी ये माया है। जैसे बताया ना बाबा ने, नीली है, पीली है, कैसी है, काली है, वाइट है, जो भी है, तो माया अनेक प्रकार से आएगी। और उसमें हमको क्या, क्योंकि चक्कर में माया आई तो भगा दो, आगे अच्छा है और ही अच्छा आनी चाहिए, जो कल को आनी चाहिए आज ही आ जाए, लेकिन हम अपने आप को मजबूत कर लें। तो उसमें हमको डिसाल्टेड नहीं होना कि हम बार बार असफल क्यों हो रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं तो हमारे को क्यों हमारा परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इतना लंबे समय से चल रहे हैं, जो संस्कार परिवर्तन होने चाहिए वो हमारे संस्कार पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कैसे जकड़ के रखे हुए हैं। तो उन बातों में डिसाल्टेड होने के बजाय धैर्यतापूर्वक इन पर और पुरुषार्थ करना है। जो बीत गया सो बीत गया, वो हमारे हाथ में नहीं, खत्म हो गया खत्म हो गया, बात खत्म होगी, लेकिन वर्तमान तो हमारे हाथ में है ना। आज तो हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, आज का हम अच्छा प्लानिंग बनाएं, आज का एक घंटे का प्लानिंग बनाएं, हमको क्या क्या करना है। हो सकता है वो आज हो भी नहीं, जो हम प्लानिंग बनाते वो नहीं भी हो, फिर कल दोबारा फिर से शुरू कीजिए, फिर से करिए। क्योंकि लंबे समय तक अगर हमको इस ब्राह्मण जीवन का सुख लेना है, इस ब्राह्मण जीवन का रस लेना है, इस ब्राह्मण जीवन में सदा खुश रहना है, तो पुरुषार्थ पर नजर भी गहराई से उस पर रखनी पड़ेगी। तो देखना है कि इस जल्दबाजी के चक्कर में हमें कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, तो हमको एक्यूरेसी नहीं छोड़नी है। पुरुषार्थ हम भले थोड़ा करें लेकिन एक्यूरेट करना है, ताकि उसका सार्थक परिणाम हमारे हाथ में आए। बहानेबाजी नहीं देनी अपने आप को, अनेक प्रकार की बहानेबाजियों के चक्कर में मनुष्य अपने असली सुख से वंचित हो जाता है। अपने करैक्टर जो है हमारे इतने चुके करैक्टर, बाबा ने बताया तुम देवताओं से भी कितने श्रेष्ठ हो, देवताएं सेकंड नंबर है और हम फर्स्ट नंबर है, कितना बड़ा बाबा ने हम सबको कितना नशा दिलाया, कहां मिट्टी के पीछे जा रहे हैं, हम हैं डायमंड और कहां मिट्टी में जा रहे हैं, मिट्टी में छिपने की फिराक में, और बाबा हमारी चमक को पूरे संसार में बिखेरना चाहता है। कितना बड़ा नशा कि सारे संसार की प्रॉपर्टी एक तरफ और तुम एक तरफ, कितनी बक्षौणी सेना और तुम एक तरफ, अर्थात हम आत्माओं कितनी ताकतवर है, कितना समर्थ है, कितनी शक्ति है, कितना बल भरा हुआ अंदर में, लेकिन उसे जब हम अनभिज्ञ रहते हैं तो फिर उदासी छाई रहती है, टेंशन रहता है, अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रसित रहते हैं, उन्हीं विचारों के चक्र में हम अपना सुख खो देते हैं। और वो आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, क्योंकि आदत पड़ी है लंबे समय से उन संस्कारों की, उन छोटे विचारों का चिंतन करने की, उन छोटे विचारों को हमने अपना मित्र बना के रखा हुआ है, उन विकारी संस्कारों के साथ ही हमारी प्रीत हुई पड़ी है। तो हमको ये देखना है कि उन चीजों पर हमको नजर रखनी है जो हमारे जीवन को धैर्यतापूर्वक शक्तिशाली बनाए, हमारे जीवन में होने वाले नुकसान से हमको बचाएं वो। तो ऐसा हमको दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ में आगे प्रोग्रेस करते रहना है। और जल्दबाजी हम कहां कहां करते हैं, कोई भी लाइन में, हाँ स्थूल रूप से जो भी स्थूल रूप से बहुत सारी बातों में आ जाता है, फिर लाइन में टोली लेने में जाना है तो जल्दबाजी आगे चले जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में जल्दबाजी करते हैं, क्या जल्दी जल्दी हो जाए पूरा भोजन करने में जल्दबाजी। हाँ हमने देखा कई भाई हैं बहुत प्यार से भोजन करते हैं, तो नहीं टाइम, तो टाइम की बात नहीं, आदत की बात है। अब टाइम होता है उनके पास और हमारे पास भी होता है, हमने देखा टाइम हमारे पास लेकर हम जल्दबाजी भी करते हैं, तो वो सीखने की बात मिलती है। देखा कोई बहुत धैर्यता से चलते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमको सीखनी चाहिए, बोले उनका देखा हमने सवेरे शाम हमको भले नहीं दिखेंगे वो, लेकिन धैर्यतापूर्वक पुरुषार्थ करते तो वो थोड़ा पुरुषार्थ ही उनको बहुत मजबूत बना रहे हैं। देखा उनके जीवन में कोई हलचल नहीं है, और जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है दिखता है 2 बजे से बोले तो दिखता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो एक अलग बात है कि अभ्यास करते करते वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई देने वाली शिक्षा तो सबके लिए दिखाई दे रही ना, वो शिक्षा देते, वो सबको प्रेरणा मिल रही ना। तो हर ब्राह्मण में ऐसे गुणों की खान है जिन गुणों को हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। खाने पीने में, चलने में धैर्यता नहीं, बहुत फास्ट स्पीड होती है, हाँ कहीं कहीं तो रखनी पड़ती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो जल्दी जाना पड़ेगा, तो उसमें हमको तो देखना पड़ता है। लेकिन कहाँ कहाँ हम जल्दबाजी कर रहे हैं वो हमको स्वयं पर ही नजर रखनी है ना। पुरुषार्थ में जल्दबाजी कहाँ होती है, जैसे योग का टाइम होगा चलो जल्दी जल्दी योग लगाना, योग तो हमारा जीवन है, नेचुरल है, एक अलग बात है कि हमको टाइम पर पहुंचना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम स्थान पर उस स्थान को पकड़ के बैठ के वहीं बैठ के योग लगाना है, हमारा तो सवेरे आंख खुलते से योग चालू है, बल्कि स्वप्न में नींद में भी चालू ही है, योग तो हमारा कहीं ना कहीं लगाया हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमको लगाना कहां है। वो ऐसा कोई नहीं जो योगी नहीं, योगी तो है ही है, कहीं ना कहीं लगाया हुआ उसका योग। तो जल्दबाजी के चक्कर में हम अपने सुख से वंचित ना हो जाए, ये हमको पूरा अपने पर ध्यान रखना है। और जल्दबाजी कहां होती है, हाँ वो इसलिए जल्दबाजी करती है क्योंकि हमारी संकल्पों में जल्दबाजी है। अगर हम संकल्प करेंगे ना माताएं बहुत अच्छी हैं तो जल्दबाजी नहीं करेंगी तो जो अनाउंसमेंट करने वाला बहुत जल्दबाजी में होता है वास्तव में क्योंकि बार बार भरा जा रहा है, बार बार भरा जा रहा है उनके अंदर। अगर उनके अंदर ये भरा जाए कि बातें बहुत अच्छी हैं, कितने धैर्यता पूर्व आती हैं, तो शायद वो परिवर्तन हो जाए। लेकिन हमारा जो अनाउंसमेंट करने का तरीका उसको चेंज करने की जरूरत है। बाबा ने बोला कभी ऐसे भोजन बनाने में जल्दबाजी, हाँ भोजन बनाने में जल्दबाजी, बनाते कोर्स कराने में जल्दबाजी, प्रदर्शनी समझाने में जल्दबाजी, हाँ तो शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट सफर बिल्कुल लॉटरी, सफलता अर्जित करने के लिए लॉटरी खरीद लो, गलत तरीके से, अवैध तरीके से। तो माना हम जल्दी सफलता अर्जित करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, और शॉर्टकट सफलता जो वो दुखदाई होती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, अल्पकाल की होती है। तो हमको देखना है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम इनसे बच सके। अब इस नुकसान से जल्दबाजी से बचना कैसे है, जल्दबाजी हमारे जीवन से समाप्त हो जाए कैसे बचना, हाँ जी धैर्य का, धैर्य के सागर से कनेक्शन रखना पड़ेगा, है ना। और बताया कि दादियों के धैर्य देखो सागर, वो तो धैर्यता का सागर दूर है, अदृश्य है, लेकिन कम से कम जो दृश्यवान है, जो हमारे सामने दादियां हैं उनके अनुभव पढ़ के कितना बड़ा धैर्य रखा है। दादी जी की सुनाते ना, एक भाई को लंदन में कितना 26 साल तक भोग खिलाते रहे, उसके बाद ज्ञान में आया वो, कितना 26 साल बाद कितना बड़ा धैर्य रखा है। हम तो सच में बहनों को देखते हैं, इतनी मेहनत करती हैं बहनें, इतनी मेहनत करती है, बात मत पूछो। कई बहनें सेंटर में सब कुछ देखना, उनको A to Z ऑलराउंडर पार्ट प्ले करना है, कितना बड़ा धैर्य रखते हैं, पता वो ज्ञान में नहीं, लेकिन फिर भी बूं करके 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 आकर सहयोगी बनते, फिर भी धीरे योगी बन जाते हैं, कितना बड़ा धैर्य है। तो हमको धैर्यता के सागर से हमको कनेक्शन रखना है, जो धैर्यता की मूर्तियां दादियां हैं उनके अनुभव पढ़ने हैं, जो पुरुषार्थ के मार्ग में धैर्यता, जिनका एक रस पुरुषार्थ है उनके जीवन को पढ़ना है, उनसे हमको सीखना है, हमको सबके प्रति जो गुण चोर बनना है, सबके गुण देखने हैं। तो बताया ना जैसे माताएं, अब वो संकल्प बुद्धि में डाल दिया हुआ है ही ऐसे, तो वो संकल्प बार बार उनको वैसे बनाते जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो हमारे खाते में पाप जमा हो रहा है क्योंकि हम बार बार उसका वर्णन कर रहे हैं, है तो सही ना। बाबा देखो हमको मीठे बच्चे कहता है, बाबा ये थोड़े बोलते इतनी बार तुमको इतने सालों से समझा रहा हूं, बदलते तो हो ही नहीं हो, लेकिन इतना प्यार से बाबा बताते तो हैं, तुम थे बंदर बुद्धि थे पहले, लेकिन पहले प्यार से कितना समझाता है। तो पहले हमको नीचे हाथ रख के ऊपर से प्यार से मारने का, अगर हमको किसी को शिक्षा देनी भी है तो हमको देखना है किस तरीके से किसको कैसे शिक्षा देनी है। अगर सीधा लगा देते हैं, थोप देते हैं, तो हमारे प्रति हमारे मन में उनके हमारे प्रति उनके मन में रेस्पेक्ट की भावना खत्म हो जाएगी, वो सम्मान नहीं मिलेगा। माताओं को भगवान ने आगे रखा है, उनके सिर पर कलश रखा है, और उन्हीं के लिए हम क्या कह रहे हैं बार बार, तो ये सोचने विषय। माताएं बहुत महान है, वंदे मातरम, संडे कौन से दो दिन पहले था ना मुरली में, भाइयों के लिए थोड़ा नहीं कहा है, खैर ये तो भाइयों के निर्माण तो जो माताओं को आगे रखते हैं
माते हैं क्योंकि है ही आगे, तो देखना है हमको कहाँ है बोलेपन में माताएं आ गई हैं, इसलिए वो आगे बोले बोलेनाथ को जल्दी राजी कर लेती हैं। तो और कहां कहां जल्दबाजी जो होती है जो नहीं करनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी जल्दी पहुंचने के चक्कर में फिर ऊपर ही पहुंच जाते हैं, सीधे पहुंच तो जाते हैं लेकिन जहां पहुंचने वहां नहीं पहुंचेंगे, कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हमारे संकल्पों की गाड़ी, जो हम याद की यात्रा की गाड़ी है, वो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुई, जहां पहुंचना हमको कहीं और पहुंच कहीं और ही रहे, तो अपने अंदर की गाड़ी को भी देखना है कि कहां कहां टकरा तो नहीं रही है। बार बार एक्सीडेंट होते तो गाड़ी 100 ठोकरे लग जाए गाड़ी तो क्या होगा, चकना चूर होगी, चलने लायक नहीं रहेगी। ऐसे मन में अंदर भी अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान चल रहे हैं तो कैसे ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे, बार बार खाई में गिरती रहेगी। और कहां जल्दबाजी नहीं करनी है, हाँ जीवन के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उनको उनको लेने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत शांत चित्त चाहिए, बहुत स्थिर चित्त चाहिए, बहुत धैर्यता चाहिए उसमें, तो ही यथार्थ डिसीजन हो पाता है। जल्दबाजी में किया गया डिसीजन फिर कहीं ना कहीं वो खतरनाक हो सकता है, छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ठीक से ले पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को हमको शांत करना है, बिल्कुल बिल्कुल शांत करना है। जैसे तालाब में नीचे अगर देखना है तो पानी एकदम स्थिर चाहिए, अगर ऊपर तरंगे होंगी बार बार पत्थर डालते जाओ तो हलचल नीचे नहीं दिखाई देगा। इस तरह मन के अंदर भी ऐसे ही शांत हो जाए कि एक ही संकल्प करें और वो डिसीजन हमारा यथार्थ हो। और कहां नहीं करनी जल्दबाजी, बोलने में कई बार ऐसे तुरंत बोल देंगे सामने वाला घायल, हाँ जी उत्तर देने में, दूसरों को डांटने में जल्दबाजी नहीं करनी, करेक्शन देने में जल्दबाजी नहीं करनी। तो डांटने में माना डांटना है लेकिन देर से ऐसे धीरे से प्यार से, वो डांट भी उसको डांट ना लगे, उस डांट में प्यार समाया हो, उस डांट में रहम की भावना हो, कल्याण की भावना हो, शुभ भावना शुभ कामना हो, तो वो उसको डांट नहीं लगे तो सामने वाला महसूस करेगा कि रियली राइट है ये। और ये होता है ऐसे, अगर हमको कल की मुरली में था ना, बड़े अगर हमको देते हैं उन जो कहते हैं उसको करते तो आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, आशीर्वाद का काम करेगी। कल की मुरली में था पार्टियों से मुलाकात, तो कई बार ऐसे लगता है कि बड़े जो करे राइट नहीं है, और लगता है राइट भी नहीं भी है, फिर क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए वो। अगर हमको बड़ा कोई कहे कि ये काम कर दो और हमको दिख रहा है कि यज्ञ का नुकसान है तो क्या करना चाहिए, नहीं हमको कर्म करने के लिए बोला जा रहा है, हमको पता है तो खराब है, तो क्या करना उस समय। हाँ आंखें बंद करके कर देने का, उसके ऊपर संकल्प नहीं चलाने का, क्योंकि उसका जिम्मेवार स्वयं भगवान है, जिसने उसको निमित्त बनाया उसका जिम्मेवार है, ठेकेदार वो है, रात की क्लास में था ना, उसने ठेका लिया, हमको थोड़ा ठेका दिया है, वो भले हम मददगार है लेकिन ऐसे कार्य में मददगार नहीं। जो डिसीजन जिसने निमित्त आत्मा ने लिया उस डिसीजन के आधार पर हमको कर्म कर देना और निश्चिंत हो जाना है। लेकिन हम अपने मन से या हमारी एक्टिविटी से यज्ञ को नुकसान ना हो, ये हमको देखना है थोड़ा। और कहां कहां, हाँ मैसेज करने में जो डिजिटल है, आधुनिकता का जो परछाया हम सबके ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो हम मैसेज करते हैं तुरंत या मैसेज रिसीव करने में उसका तुरंत आंसर देने में थोड़ा धैर्यतापूर्वक दे, हो सकता है आवश्यकता ना पड़े, अगर हमारी शुभ भावना कामना है तो अपने आप ही टचिंग हो जाए, उसको मैसेज करने की जरूरत ही ना पड़े, तो थोड़ा उसके थोड़ा अच्छा सहयोग करके बाबा के सामने उस आत्मा को बिठा के हो सकता है बाबा डायरेक्ट ही दे दे हमें मुक्त कर दे। कंप्लेंट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कंप्लेंट लेकिन जल्दबाजी नहीं, हाँ सोच समझ के कंप्लेंट करनी, किसकी करनी किसी की नहीं, ऐसा नहीं हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए वो कंप्लेंट किसी की। तो और समय स्थान और परिस्थिति देख के हमको कंप्लेंट करनी है, अर्थात अगर किसी की कंप्लेंट करे तो उसको कंप्लीट बनाने की भावना हमारे अंदर हो, ऐसा नहीं खाली कंप्लेंट ही करनी है, उसको नीचे गिराने की भावना नहीं हो कि कैसे वो हमारे से आगे ना बढ़े तो हम उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, नहीं, अगर किसी की कंप्लेंट करनी है तो उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, ताकि उसमें उसका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, यज्ञ का भी हो, वायुमंडल भी अच्छा बने। कल था ना वायुमंडल के ऊपर सारा, तो कहां कहां देखना है, तो ये जल्दबाजी की बहुत बीमारी में जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी ठीक हो जाए। हाँ ये भी देखते हैं, तो एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, और वो पंचकर्मा भी, फिर ये चुंबक वाली कौन थी, मैग्नेट थेरेपी भी, तो वो हल्दी विल्दी सब सारा इकट्ठा करते करते और फिर जल्दी ठीक हो जाता है, पूरा ही हो जाता है काम। तो ये भी धैर्यता पूर्वक चाहिए हमको। डॉक्टर ने माना तीन टाइम की खुराक एक टाइम से दी, तीनों गटगट कर ली। तो ये देखना है हमको कि जल्दबाजी नहीं करनी। और हाँ, बीमारियों में हमको अधिकतर ना योग का अभ्यास करना चाहिए, बहुत बीमारियों से पहले रोज बाबा से तंदुरुस्त भव का वरदान लेना है। और बीमारियों से कोई ऐसा है नहीं कोई जिसको नहीं हो, है तो सही, कोई ना कोई बीमारी तो लगी है, लेकिन आत्मा को इतना समर्थ बना देना। और सचमुच योग में ताकत है, लेकिन हमें उस पर विश्वास कम है, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, इसलिए वो पूरा काम करता नहीं है। नहीं तो संसार में भी तो योग के बल पर वो कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारे सिर के ऊपर सुप्रीम सोल की छत्रछाया है, लेकिन उसके ऊपर फेथ करना, इतने अच्छे अच्छे हम ज्ञान अमृत में अनुभव पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो असंभव सी लगती थी, लेकिन वो संभव कैसे होगी योग बल से। तो थोड़ा उसके ऊपर भी हमको बीमारियों में भी योग बल का प्रयोग करना, ताकि बीमारियां तो आएंगी आएंगी, बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका लाइलाज बीमारियां, डॉक्टरों के पास भी दवाई नहीं है, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर, क्योंकि डॉक्टर खुद ही बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे फिर, कमर दर्द, ये दर्द, फलाना दर्द। अब इससे छूट तो कोई सकता नहीं है। तो इन चीजों से हमको धैर्यता पूर्वक चलना है, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। तो अनेक प्रकार की बीमारियों से, विसंगतियों से बचने के लिए अपने जीवन में धैर्यता को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं हो कि आगे हम दौड़ते जा रहे हैं और पीछे छूटता जा रहे हैं, नहीं, हमको सब हिसाब किताब चुकतू करते 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 हमको इन चीजों को जीवन में अप्लाई करना। नहीं तो लास्ट में देखेंगे बैंक का खाता जो होना चाहिए जमा वो खाली है, है ना। किसी ने सामने से अगर फोन किया और हम उसको अपना ओटीपी नंबर बता देते तो क्या होता है, बाद में खाता खत्म हो जाता है। तो वही हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि माया को हम ओटीपी नंबर बताते रहे, वन टाइम पासवर्ड। तो बहुत सारे देखने हैं अंदर ही कि कहां कहां हमको इन चीजों से मुक्त होना है। ओम शांति। बंद हो